ग्रंथ में बताया गया कि विनाशित्वंच शब्दस्य अनुमानात्। यहाँ पर जो है ना विनाश की बात की गई, शब्द का विनाश कैसे होता है, शब्द कैसे नष्ट होता है। तो ये आद्य और मध्यम शब्द जो है वह कार्य शब्द से नष्ट होता है, और उपांत्य शब्द से अंत्य शब्द का नाश, और अंत्य शब्द से उपांत शब्द का नाश होता है सुंदोप सुंदर न्याय से, ये कहा गया। जिसका कि तर्क भाषाकार ने खंडन किया, कहा कि उपांत्य शब्द के नाश से अंत्य शब्द का नाश होता है, उपांत्य शब्द से अंत्य शब्द का नाश नहीं होता। तो ये जो यहाँ नाश होने की बात कही गई, तो कहा कि ये जो इसमें शब्द में आपने विनाश, शब्द का विनाश होना माना है, शब्द का ध्वंस माना है, ध्वंस और विनाश एक ही चीज है। तो शब्द का जो आपने ध्वंस माना है, या तो प्रत्यक्ष गोचर नहीं है, प्रत्यक्ष गोचर, गो माने इंद्रिय, चर माने विषय, माने इंद्रिय से जो प्रत्यक्ष का विषय हो उसको हम कहते हैं इंद्रिय गोचर। तो विनाशित्व जो है शब्द का, यह इंद्रिय गोचर नहीं है, माने इंद्रिय से प्रत्यक्ष होने वाला नहीं है। तो कैसे हम मानेंगे कि शब्द का विनाश होता है, तो वही कहा कि विनाशित्वंच शब्दस्य अनुमानात्। ये कि अनुमान प्रमाण से शब्द का विनाशित्व माना जाता है। तो अनुमान प्रमाण से माना जाता है, तो विनाशित्व माने अनित्यत्व है, तो ये अनित्यत्व जो है शब्द में रहता है, ये अनुमान प्रमाण से सिद्ध है। अब वो अनुमान प्रमाण कैसे है, तो बताता था ही अनित्य शब्द, शब्द जो है अनित्य होता है। अब देखिए यहाँ पर भी व्याकरण सिद्धांत से भिन्न बात है। ये न्यायिक लोग जो है ना शब्द को अनित्य मानते हैं, जबकि व्याकरण जो है शब्द को नित्य मानते हैं। तो यहाँ भी मतभेद है, लेकिन चलिए ये न्याय भाषा का ग्रंथ है, तो इसमें जो है इसी की बात की चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि तथा ही अनित्य शब्द, शब्द जो है अनित्य है, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। सामान्य बत्वे सति, क्यों कि क्यों ये अनित्य है शब्द, तो कहा कि सामान्य बत्वे सति, इस शब्द में सामान्य बत्व है, सामान्य बत्व है, सामान्य मतलब जाति, इसमें जाति रहती है। और अस्मदादि बाह्य इंद्रिय ग्राह्यत्वात्, और हमारे आपके की जो बाह्य इंद्रिय है उस बाह्य इंद्रिय से यह ग्राह्य होता है, माने श्रोत्रेंद्रिय से यह ग्राह्य होता है। तो जिसमें सामान्य रहता हो माने जाति रहती हो, और जो बाह्य इंद्रिय से ग्राह्य होता हो वह अनित्य होता है। शब्द में भी जो है सामान्य वत्व है और अस्मदादि बाह्य इंद्रिय ग्राह्यत्व है, इसलिए शब्द अनित्य है। उदाहरण दिया घटवत, माने घरे की तरह, क्योंकि घरा में जैसे घटत्व जाति रहती है, और घरा जो है बाह्य इंद्रिय जो चक्षुरिंद्रिय है उससे ग्राह्य होता है, तो त्वगिंद्रिय से भी वह ग्राह्य होता है। तो बाह्य इंद्रिय ग्राह्यत्व होने से और सामान्य वत्व होने से जैसे घट अनित्य माना जाता है, उसी तरह से शब्द भी जो है अनित्य माना जाएगा। इस अनुमान में शब्दस्य अनित्यत्वम साध्यम, शब्द का जो अनित्यत्व है वह साध्य है। अनित्यत्वंच, अब कहा कि ये जो शब्द में अनित्यत्व का साधन करते हैं, यह अनित्यत्व क्या है, इस अनित्यत्व का लक्षण क्या है, तो अनित्यत्व का लक्षण बताने के लिए कहते हैं कि अनित्यत्वंच विनाशावच्छिन्न स्वरूपत्वम, विनाशावच्छिन्न स्वरूपत्व ही अनित्यत्व है। तो किंग नाम अनित्यत्वम, यदि ये पूछा जाए तो लिखेंगे विनाशावच्छिन्न स्वरूपत्वम। ये तो लिखने की बात हुई, इसको समझने की बात क्या है, तो जिसके स्वरूप का विनाश हो उसे हम अनित्य कहते हैं, यही है विनाशावच्छिन्न स्वरूपत्वम। जिसके स्वरूप का विनाश होता हो है, वह है विनाशावच्छिन्न स्वरूप, और विनाशावच्छिन्न स्वरूप को ही हम अनित्य कहते हैं। न तो विनाशावच्छिन्न सत्ता योगित्वम, कहा कि अनित्यत्व का लक्षण ये नहीं करेंगे, विनाशावच्छिन्न सत्ता योगित्वम, माने विनाशावच्छिन्न सत्ता के साथ जिसका योग हो, संयोग हो, वह अनित्य है, ऐसा जो है अनित्यत्व का लक्षण नहीं करेंगे। कहा कि क्यों ऐसा क्यों नहीं करेंगे, लक्षण क्या हर्ज है, कहा कि ऐसा अगर लक्षण करेंगे अनित्यत्व का, तो प्राग भावे सत्ताहीने अनित्यत्वाभाव प्रसंगात, कहा कि प्राग भाव जो है वह सत्ता से हीन है, वह सत्ता योगी नहीं होता है, तो सत्ता से हीन है, फिर भी प्राग भाग में अनित्यत्व अभाव का प्रसंग हो जाएगा, माने अनित्यत्व नहीं रहेगा, जबकि प्राग भाव जो है उसमें अनित्यत्व होता है, हैं, लेकिन अगर हम विनाश अवच्छिन्न सत्ता योगित्व लक्षण करेंगे तो प्राग भाव में अनित्यत्व जो होना चाहिए उसका अभाव हो जाएगा। इसी तरह से आगे फिर परिष्कार करते हैं लक्षण का, कहते हैं कि सामान्य वत्वे सति अस्मदादि बाह्य इंद्रिय ग्राह्यत्व हेतु इंद्रिय ग्राह्यत्वात् इति उच्यमाने। कहा कि ऐसा अनुमान जो आपने किया ना, उसमें ऐसा कहिए कि सामान्य वत्वे सति अस्मदादि बाह्य इंद्रिय ग्राह्यत्व, ये जो बाह्य इंद्रिय, ये जो सामान्य वत्वे सति अस्मदादि बाह्येन्द्रिय ग्राह्यत्व हेतु, हाँ ये जो हेतु आपने बताया पर पूर्व के अनुमान में, उसमें इंद्रिय ग्राह्यत्वात् इति उच्यमाने। कहा कि अगर उसमें सामान्य वत्वे सति इस अंश को छोड़ देंगे, केवल कहेंगे इंद्रिय मात्र इंद्रिय ग्राह्यत्वात् इतना ही अगर हेतु कहेंगे तो भी दोष होगा। क्या दोष होगा? कहा कि इंद्रिय ग्राह्यत्वात् इति उच्यमाने, इतना ही अगर उच्यमान होगा कहा जाएगा तो आत्मनि व्यभिचार स्यात्, तो आत्मा में जो है ना इस लक्षण का ये व्यभिचार होगा। माने इस व्यभिचार होना क्या होता है कि हेतु रहे हैं, माने हेतु क्या बनाया आपने, इंद्रिय ग्राह्यत्व हेतु बनाया ना, तो इंद्रिय ग्राह्यत्व आत्मा में तो रहता है, मन से उसका ग्रहण होता है, तो इंद्रिय ग्राह्यत्व रहेगा माने हेतु रहेगा आत्मा में, लेकिन साध्य नहीं रहेगा अर्थात अनित्यत्व नहीं रहेगा। तो इस तरह से आत्मा में व्यभिचार हो जाएगा। व्यभिचार कहते हैं हेतु का होना और साध्य का न होना अगर हो तो वहाँ व्यभिचार माना जाता है। तो अगर हम सामान्य वत्वे सति अस्मद आदि बाह्य इंद्रिय ग्राह्यत्व के बदले केवल इंद्रिय ग्राह्यत्व ही हेतु में रखें अनुमान में, तो आत्मा में व्यभिचार होगा अर्थात आत्मा में जो है हेतु जाएगा लेकिन साध्य नहीं जाएगा। अतः उक्तम बाह्येति, इसलिए यहाँ पर इंद्रिय में बाह्य विशेषण लगाया गया। अब बाह्य विशेषण लगा देंगे तो मन से उसका ग्रहण होता है, मन तो अंतरिंद्रिय है, तो बाह्य इंद्रिय करेंगे ना तो फिर क्या होगा, हेतु भी नहीं जाएगा और साध्य भी नहीं जाएगा, तो व्यभिचार नहीं होगा। एवं अपि तेनैव योगी बाह्य इंद्रियेन ग्राह्ये। अब योगी जो होते हैं, योग विद्या निपुण जो होते हैं, वो उनको जो है ना बाह्य इंद्रिय ग्राह्य परमाणुवादो, योगियों को बाह्य इंद्रिय से जो है परमाणु आदि का ज्ञान होता है, ये न्याय दर्शन वाले मानते हैं कि परमाणु का भी जो है प्रत्यक्ष होता है। किनको? योगियों की दृष्टि से। हमारी आपकी दृष्टि से वह अप्रत्यक्ष है, लेकिन योगियों की दृष्टि से वह प्रत्यक्ष है। तो यह जो योगी का जो बाह्य इंद्रिय से ग्राह्य जो परमाणु आदि है उसमें व्यभिचार होगा, उस व्यभिचार को रोकने के लिए अतो योगी निराशार्थम उक्तम अस्मदादि, वो जो कहा ना अस्मदादि बाह्य इंद्रिय ग्राह्यत्वात्, ये अस्मदादि इसलिए कहा कि योगियों के प्रत्यक्ष ग्राह्य में इसका व्यभिचार न हो। अस्मदादि कहने से योगी अलग हो जाएंगे, केवल हम ही लोग पकड़े जाएंगे, तो हम लोगों वाले इंद्रिय ग्राह्य की ही बात होगी, योगी के इंद्रिय ग्राह्य जो है परमाणु आदि उसकी बात नहीं होगी, फिर व्यभिचार उसमें नहीं होगा। अब यहाँ जो योगी के प्रत्यक्ष ग्राह्य की बात की गई कि परमाणु आदि जो है योगियों का बाह्य इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है, तो इसमें सवाल ये किया गया कि योगी होते हैं इसी में क्या प्रमाण है? तो वही कहा किम पुनः योगी सद्भावे प्रमाणम, कहा कि योगियों के होने में ही क्या प्रमाण है? तो कहा कि उच्यते, कहा जाता है कि परमाणव कस्यचित प्रत्यक्षा, कि परमाणु जो है वो कस्यचित माने किसी को प्रत्यक्ष होता है। क्यों? तो प्रमेयत्वात्, क्योंकि परमाणु में प्रमेयत्व रहता है, अर्थात जो जो प्रमेय होता है वह प्रत्यक्ष होता है, तो परमाणु में भी प्रमेय है इसलिए वह किसी का प्रत्यक्ष होता है। कैसे? तो घटवत माने घरे की तरह, जैसे घरा घट में प्रमेयत्व है तो घट का प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह से परमाणु में भी जो है प्रमेयत्व है तो परमाणु का भी प्रत्यक्ष होता है। इस अनुमान से अब कस्यचित प्रत्यक्षात, वो कस्यचित कौन है? तो योगी है, उसको वह प्रत्यक्ष होता है। तथापि सामान्यादिना व्यभिचार अतो उक्तम सामान्य वत्वे सति, फिर भी जो है इसमें सामान्य वत्वे सति ये जो कहा गया ना, वो इसीलिए क्या कहा गया कि सामान्य तथा शब्द ध्वंस में हेतु जो है वह अनित्यत्व विनाशावच्छिन्न स्वरूपत्व का व्यभिचारी हो जाएगा, और जब सामान्यवत्व अंश के हेतु शरीर में रहेगा तब सामान्य आदि में व्यभिचार नहीं होगा, क्योंकि सामान्य विशेष और समवाय के सामान्य हीन होने के कारण सामान्य में सामान्यवत्व से घटित हेतु न रहेगा, अतः सामान्य आदि में उक्त हेतु अनित्यत्व का व्यभिचारी न होगा। तो सामान्य विशेष समवाय इसमें व्यभिचार न हो, इसीलिए जो है ना इस व्यभिचार को रोकने के लिए सामान्य वत्वे सति ये हेतु बताया गया। ये कहाँ की बात हो रही है, वही अनित्य शब्द सामान्य वत्वे सति अस्मदादि बाह्य इंद्रिय ग्राह्यत्वात् घटवत्, इसमें जो सामान्य वत्वे सति अस्मदादि बाह्य इंद्रिय ग्राह्यत्वात् हेतु कहा गया उसकी बात हो रही है कि सामान्य वत्वे सति अगर नहीं कहेंगे तो क्या होगा, सामान्य आदि ना व्यभिचार, सामान्य आदि माने समवाय विशेष इन समूह में व्यभिचार होगा। आपको मैंने बताया था व्यभिचार मतलब हेतु जाएगा और साध्य नहीं जाएगा, तो इस तरह से इस व्यभिचार को रोकने के लिए अतः उत्तम सामान्य वत्वे सति, इसलिए सामान्य वत्व कहा गया। और जब सामान्य वत्व कह देते हैं तो सामान्यादि त्रयस्य निसामान्यत्वात्, तो सामान्य विशेष और समवाय ये जो तीनों हैं सामान्यादि त्रय इसमें निसामान्यत्व है, अर्थात यह इसमें सामान्य नहीं रहता है, यह सामान्य का आश्रय नहीं होता है। तो सामान्यादि में व्यभिचार न हो इसलिए सामान्य वत्वे सति ये कहा गया, और इंद्रिय योगी बाह्य इंद्रिय ग्राही जो परमाणु आदि है उसमें व्यभिचार न हो इसलिए अस्मदादि कहा गया, और फिर आत्मा में व्यभिचार न हो इसलिए जो है बाह्य ये विशेषण कहा गया। इस तरह से मतलब ये जो हेतु है सामान्य वत्वे सति अस्मदादि बाह्य इंद्रिय ग्राह्यत्वात्, इस हेतु में सामान्य वत्वे क्यों कहा गया, अस्मदादि क्यों कहा गया, बाह्य क्यों कहा गया, इन तीनों की व्यावृत्ति आपको बताई गई। फिर से आपको याद दिला दूं कि बाह्य इंद्रिय में इसलिए विशेषण लगाया गया क्योंकि जो है अंतरिंद्रिय ग्राह्य जो आत्मा है उसमें व्यभिचार न हो। अस्मदादि क्यों इंद्रिय में विशेषण लगाया गया, तो इसलिए कि योगी प्रत्यक्ष गम्य जो है परमाणु आदि उसमें व्यभिचार न हो, इसलिए अस्मदादि विशेषण लगाया गया। सामान्य वत्वे सति ये विशेषण दल क्यों लगाया गया, तो इसलिए लगाया गया कि सामान्य आदि जो त्रय हैं सामान्य विशेष समवाय इसमें व्यभिचार न हो, इसलिए सामान्य वत्वे सति कहा गया, क्योंकि सामान्य विशेष समवाय जो है इसमें सामान्य वत्व नहीं होता, ये निस्सामान्य होते हैं। तो इस और व्यभिचार न हो, व्यभिचार न हो, व्यभिचार न हो, इसलिए ये तीनों विशेषण लगाए गए। ये व्यभिचार क्या है वो आप फिर यहाँ ध्यान रख लीजिए, हेतु का होना और साध्य का न होना जो है वही व्यभिचार है। इसमें ये जो सती कहा जाता है ना इसको विशेषण दल कहा जाता है, जैसे यहाँ कहा गया ना सामान्य वत्वे सती ये है विशेषण दल, और अस्मदादि बाह्य इंद्रिय ग्राह्यत्व ये जो है ना ये है विशेष्य दल। तो विशेष्य दल में भी विशेषण होते हैं, तो जो जो विशेषण इसमें लगाए गए सारे विशेषणों का जो है प्रयोजन बताया गया आपको, ये जो विशेषण का प्रयोजन बताना होता है इसी को व्यावृत्ति कहते हैं, वही आपको यहाँ पर क्लियर करके कहा गया। इस तरह से शब्द का निरूपण जो है शब्द नाम के गुण का निरूपण यहाँ पर संपन्न होता है। अब एक बुद्धि, इसके बाद 16वां नंबर जो है गुण का वो है बुद्धि। तो बुद्धि का लक्षण बताया इन्होंने, अर्थ प्रकाशो बुद्धि, माने जो प्रकाश अर्थ विषयक हो उस प्रकाश को हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का लक्षण बताया अर्थ प्रकाशो बुद्धि, माने अर्थ विषयक जो प्रकाश है उस प्रकाश को हम बुद्धि कहते हैं। यह बुद्धि दो प्रकार की होती है, नित्या बुद्धि और अनित्या बुद्धि। उसमें ऐसी बुद्धि जो है वह नित्या है, ऐसी बुद्धि मतलब ईश्वर में रहने वाली जो बुद्धि है वह नित्य बुद्धि है। अन्य दिया माने ईश्वर से भिन्न मनुष्य आदि में रहने वाली जो बुद्धि है वह अनित्य बुद्धि है। इसी प्रकार से 17वां गुण है प्रीति, प्रीति का लक्षण बताया सुखम, प्रीति ही सुखम माने सुख को हम प्रीति नाम का गुण कहते हैं। अब सुख किसको कहते हैं, तो तच्च सर्वात्मा सर्वात्मनाम अनुकूल वेदनीयम, सभी को जो अनुकूल वेदनीय हो, वेदनीय मतलब समझ में जो आने योग्य हो, अनुकूल मतलब जैसा आप चाहते हैं वैसा होना, ये होता है अनुकूल। तो जैसा आप चाहते हैं वैसा समझ में आना, वैसा होना, समझ में नहीं आना, ऐसा होना, जैसा आप चाहते हैं वैसा होना, ये है अनुकूल वेदनीय। तो सभी को जो अनुकूल वेदनीय हो उसको हम सुख कहते हैं। इसी तरह से पीड़ा दुखम, दुख किसको कहते हैं, तो पीड़ा को दुख कहते हैं। पीड़ा किसे कहते हैं, तो ठीक विपरीत है, सुख के विपरीत है। तच्च सर्वात्मनाम प्रतिकूल वेदनीयम, जो सभी को प्रतिकूल वेदनीय हो, अर्थात जैसा वह चाहता है वैसा वह जो है न हो, तो उसको प्रतिकूल वेदनीय कहते हैं। और यही जो प्रतिकूल वेदनीय है, यही दुख का लक्षण है। तो अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। अनुकूल अगर लगे तो वह सुख है, प्रतिकूल अगर लगे तो वह दुख है। ऐसे ही रागः इच्छा, इच्छा नाम का जो गुण है वह किसको कहते हैं, तो रागः इच्छा, राग को कहते हैं इच्छा। यह जो मतलब इच्छा का जो लक्षण किया राग, तो यह जो इच्छा है वह भी दो प्रकार की इच्छा होती है, एक फल इच्छा होती है और एक उपाय इच्छा होती है। माने फल की इच्छा और फल को प्राप्त करने के लिए जो उपाय है, साधन है, उसकी इच्छा है? तो इच्छा का लक्षण बताया राग। ऐसे ही बीसवां जो गुण है वह है द्वेष, द्वेष का लक्षण बताया क्रोधो द्वेष, क्रोध को जो है हम द्वेष कहते हैं, तो क्रोध का ही नाम है द्वेष। यह जो है जीव का विशेष गुण है। इसके दो भेद होते हैं, दुख द्वेष और दुख साधन द्वेष। चलिए फिर 21वां गुण है उत्साह प्रयत्न, प्रयत्न नाम का जो गुण है उसको किसका नाम है, उत्साह का नाम है प्रयत्न। ये भी दो होते हैं, नित्य अनित्य होते हैं। ईश्वर का प्रयत्न नित्य होता है और अनित्य प्रयत्न जो होता है वह हमारे आप में होता है। बुद्धियादय क्षण मानस प्रत्यक्षा, कहा कि बुद्धि आदि जो छह गुण है, माने बुद्धि इच्छा द्वेष इस तरह से जो गुण है छह, वो मानस प्रत्यक्ष होते हैं, माने उनका मन इंद्रिय से जो है ग्रहण होता है। तो वो छह कौन है, तो सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न प्रवृत्ति निवृत्ति, ये जो छह गुण हैं, इन छह गुणों का मानस प्रत्यक्ष होता है, बाह्य इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता है। आज का पाठ यहीं रखते हैं।